136। अभिमन्यु के लव कन्फेशन और उसकी बातें सुनकर इप्सिता ने अभिमन्यु की तरफ देखा। तभी अभिमन्यु ने इप्सिता के माथे को बड़े प्यार से चूम लिया। जैसे ही इप्सिता ने अभिमन्यु के चुंबन को महसूस किया, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अभिमन्यु उसके चेहरे को जी भरकर देखते हुए बोला, इप्सिता, आपको पता है, जब आप हमसे दूर हुईं, तब हमें अपनी फीलिंग्स का एहसास हुआ कि हम आपसे कितना ज्यादा प्यार करने लगे थे। आपसे बिछड़ने के बाद हम इस बात को महसूस कर पाए कि हमारे लिए अगर कोई इम्पॉर्टेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। हम ना हर रोज़ यहाँ पर आते थे सिर्फ और सिर्फ आपके साथ बिताई वो एक शाम याद करने के लिए, और हम हर उस जगह पर गए थे जहाँ पर हम दोनों एक साथ गए थे। इप्सिता अभिमन्यु की ये बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई और उसे थोड़ी हैरानी भी हुई। अभिमन्यु ने जैसे ही इप्सिता के चेहरे की मुस्कुराहट को देखा, उसने अपने दिल पर हाथ रखा और इप्सिता की तरफ देखते हुए कहा, आपकी मुस्कुराहट देखने के लिए हम कितना तड़पे हैं, हम इस बात को अपने लफ्ज़ों से जाहिर ही नहीं कर सकते। इप्सिता अभिमन्यु की बात सुनकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है ना, खुद देखिए। इप्सिता अभिमन्यु की तरफ हैरानी से देख रही थी। तभी अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ को अपने सीने पर रख लिया। इप्सिता ने महसूस किया कि अभिमन्यु के दिल की धड़कनें कितनी तेज़ हो गई थीं। जैसे ही इप्सिता ने अभिमन्यु की धड़कनों को सुना, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने धीमी आवाज़ में पूछा, क्या सच में आप हमसे इतना प्यार करते हैं? अभिमन्यु इप्सिता के एकदम नज़दीक जाकर उसके कान में कहा, इससे भी बहुत ज़्यादा, इतना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकती, उतना प्यार करते हैं हम आपसे, और हम भी कभी लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकते, कभी भी नहीं, सारी दुनिया के शब्द कम पड़ जाएंगे। इप्सिता अभिमन्यु की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई। अभिमन्यु की भी आंखों में आंसू थे। वे दोनों एक दूसरे को बस एक टक देखते ही जा रहे थे। उन दोनों के बीच एक इमोशनल माहौल बन गया था। पिछली बातों को याद करके वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। अभिमन्यु इस पल को और भी ज़्यादा यादगार बनाना चाहता था, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे इप्सिता के करीब जाकर उसके होठों पर फिर से अपने होठ रख दिए, और इस बार वो थोड़ा पैशनेटली और थोड़ा डीपली इप्सिता को किस करने लगा। इप्सिता अभिमन्यु के चुंबन को महसूस करके खुश हुई और उसने अभिमन्यु को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। वे दोनों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। कहीं ना कहीं उन दोनों के चेहरे पर खुशी भी थी, लेकिन वहीं इप्सिता और अभिमन्यु दोनों की आंखों से आंसू निकलने लगे और दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ स्टूडियो में नंदिनी अपना आज का काम खत्म कर चुकी थी। तभी उसकी एक असिस्टेंट उसके पास आकर बोली, मैम, मैं जानती हूँ आपका वर्किंग आवर्स का टाइमिंग खत्म हो चुका है, पर क्या आप मुझे दो तीन चीज़ें क्लियर कर सकती हैं? नंदिनी ने चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी स्माइल के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, पूछो ना। नंदिनी अपनी असिस्टेंट से बात करने लगी और धीरे धीरे स्टूडियो के सभी लोग जा चुके थे। तभी ध्रुव नंदिनी के पास आया और उसने कहा, नंदिनी, बॉस बुला रहे हैं। बॉस ने अभी इस टाइम, नंदिनी ने थोड़ा डरते हुए कहा। ध्रुव ने धीरे से अपना सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैं बाहर निकल ही रहा था कि तभी मैं उन्हें दिखा, बस उन्होंने मुझे देखकर कहा कि मैं तुम्हें उनकी केबिन में भेज दूँ, तुम जाकर मिल लेना। ध्रुव की ये बात सुनकर नंदिनी ने भी हाँ में सिर हिलाया और वो सीधे अपने बॉस के केबिन की तरफ जाने लगी। क्या बात है, आखिर अथर्व सर ने मुझे क्यों बुलाया होगा? कहीं वो उस दिन की बात से नाराज तो नहीं है? कहीं मुझे डांटना तो नहीं चाहते? उन्हें लगता हो कि मैंने उनसे झूठ तो नहीं बोला था? लेकिन मैं तो झूठ बोल भी नहीं रही थी। इप्सिता की उस दिन सच में तबीयत खराब थी, नंदिनी ने अपने मन में कहा। नंदिनी ये बात सोचते हुए सीधे केबिन के बाहर पहुंची। उसने केबिन का दरवाजा नॉक करते हुए कहा, मे आई कम इन? अथर्व ने सिर हिलाते हुए कहा, यस कम इन नंदिनी। नंदिनी अथर्व के सामने जाकर खड़ी हुई और अथर्व के कुछ भी बोलने से पहले ही नंदिनी ने कहा, बॉस, आपने मुझे इस समय बुलाया, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नंदिनी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही अथर्व ने कहा, नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, मैंने तुम्हें यहाँ डांटने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी, बैठो। जैसे ही अथर्व ने उसे बैठने के लिए कहा, नंदिनी चुपचाप सामने वाली चेयर पर बैठकर अपने मन में बोली, बॉस को मुझसे क्या बात करनी है? नंदिनी सोच ही रही थी कि तभी अथर्व ने कहा, तुम सच में अपने काम को लेकर काफ़ी अच्छी हो, मैंने हमारे स्टूडियो के सारे असिस्टेंट से तुम्हारी तारीफ सुनी है, तुम्हारे लिए दूसरी कंपनी से भी ऑफर आ रहे हैं। जैसे ही नंदिनी ने ये बात सुनी, वो बिल्कुल हैरान होते हुए बोली, क्या मतलब है आपका? अथर्व ने अपने हाथ में पड़ा हुआ एक डॉक्यूमेंट पेपर उसके सामने रखते हुए कहा, ये एक बहुत बड़ी दूसरी कंपनी है जिसने तुम्हें मेकअप एक्सपर्ट के तौर पर अपनी कंपनी में बुलाया है, उनके एक इवेंट फैशन वीक में सारे रैंप मॉडल का मेकअप करने के लिए, और इसके अलावा तुम्हारी एक मंथ की हाई पेड इंटर्नशिप भी है वहाँ पर, जिससे कि तुम वहाँ जाकर उनके स्टूडियो के बाकी मेकअप आर्टिस्ट को भी अपनी तरह एक्सपर्ट बना सको। नंदिनी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई।
तभी अथर्व ने कहा, मुझे तुम्हारा उस कंपनी में जाकर काम करना बिल्कुल सही लगा, क्योंकि काफी बड़ी और नामी कंपनी है और अभी एक बहुत बड़ा शो ऑर्गेनाइज कर रही है, और अगर तुम वहां जाओगी तो तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होगा और इसी तरह तुम्हें और भी ऑफर मिलेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार जाकर उस कंपनी में बात करो। अगर तुम्हें उनका ऑफर पसंद आता है तो तुम वहां और यहाँ दोनों जगह काम कर सकती हो। नंदिनी ने जैसे ही ये बात सुनी उसने हैरानी से पूछा, सच में बॉस, अगर मैं उस कंपनी में काम करूंगी तो उसके साथ साथ यहाँ पर भी काम कर सकती हूँ? अथर्व ने उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं अपनी कंपनी की इतनी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट किसी और कंपनी के लिए ऐसे ही तो नहीं छोड़ने वाला। हाँ, मैं सपोर्ट कर सकता हूँ जिससे तुम्हारे हाथों से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी ना जाए। नंदिनी उसकी बात सुनकर खुश होते हुए बोली, थैंक यू सो मच बॉस। अथर्व नंदिनी को खुश होते देखकर बोला, अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो फिर ठीक है, मैं उस कंपनी के मैनेजर का नंबर तुम्हें सेंड कर दूंगा, तुम एक बार जाकर उनसे बात कर लेना। नंदिनी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ओके बॉस, थैंक यू सो मच। इतना बोलकर वो खड़ी हुई और सीधे उसके कमरे से बाहर निकल आई। बाहर निकलते ही नंदिनी अपनी ही जगह पर तेजी से उछलते हुए बोली, यस, फाइनली मुझे भी एक अच्छी गुड न्यूज मिल गई। अब मैं एक साथ दो दो कंपनी में काम करूंगी। दो कंपनी में काम मतलब डबल सैलरी। नंदिनी काफी ज्यादा खुश हो गई थी और तभी उसने कहा, लेकिन डबल सैलरी मतलब डबल मेहनत। इतना बोलकर उसने गहरी सांस ली और कहा, कोई बात नहीं, अगर ज्यादा पैसे कमाने हैं तो ज्यादा मेहनत भी तो करनी होगी, और वैसे भी अच्छी बात है, अभी अगर मैं उसे बड़ी कंपनी और फैशन वीक ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनियों में काम करूंगी तभी तो टॉप मेकअप एक्सपर्ट में मेरा नाम आएगा। अब ये खुशखबरी सबसे पहले उदय को देती हूँ। इतना बोलकर नंदिनी सीधे ऑफिस से बाहर निकली और उसने कार में बैठते ही पहले उदय को कॉल किया। उदय ने नंदिनी का नंबर देखा और उसने कॉल पिकअप करते हुए कहा, हेलो नंदिनी, क्या हुआ, आपने मुझे इस समय कॉल किया? नंदिनी ने खुश होते हुए कहा, हाँ उदय, मुझे आपसे कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज देनी थी, इसलिए आप बिजी में क्या? उदय ने मना करते हुए कहा, नहीं मैं बिजी नहीं हूँ, बताइए क्या बात है? नंदिनी ने कहा, आज आपको पता है अथर्व बॉस ने मुझे कितनी बड़ी गुड न्यूज दी, मुझे दूसरी कंपनी का भी मेकअप एक्सपर्ट बनने के लिए ऑफर आया है और मैंने उनकी वो बात मान ली।
उदय चुपचाप नंदिनी की बात सुन रहा था, उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी नंदिनी ने थोड़ा कन्फ्यूज होते हुए पूछा, क्या बात है उदय, मैंने आपको इतनी बड़ी गुड न्यूज दी और आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, आप खुश नहीं है क्या मैंने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो? उदय ने नंदिनी की ये बात सुनकर थोड़ा रुक कर उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं मैं भला खुश क्यों नहीं होगा, कंग्रेचुलेशंस टू यू, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है आपको। नंदिनी को उदय की आवाज में खुशी नजर नहीं आ रही थी और वो उसके इस बिहेवियर से थोड़ा परेशान हो गई। उसने अपने मन में कहा, उदय ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं, वो बोल तो रहे हैं कि मेरे लिए खुश हैं, लेकिन मुझे उनकी आवाज में खुशी सुनाई क्यों नहीं दे रही। नंदिनी ने धीमी आवाज में कहा, आखिर क्या बात है उदय, ऑफिस में किसी बात को लेकर आप परेशान हैं क्या या बिजी हैं? उदय ने नंदिनी की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं आपसे घर पर आकर बात करता हूँ। नंदिनी ने कहा, ओके बाय। इतना बोलकर नंदिनी ने कॉल कट कर दिया। वो फोन साइड में रखकर अपने मन में बोली, हम शायद कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, उधर काम में बिजी होंगे इसलिए उन्होंने ठीक से बात नहीं की, कोई बात नहीं घर जाकर हम सेलिब्रेट कर लेंगे। वहां से निकलकर नंदिनी सीधे घर पहुंची और जब वो वहां गई तो उसने देखा इप्सिता पहले से ही घर पहुंच चुकी थी और उसकी मॉम के साथ किचन में बिल्कुल नॉर्मल खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भी टेंशन नजर नहीं आ रहा था, बल्कि वो आज बाकी दिनों से काफी ज्यादा खुश लग रही थी। नंदिनी उसे देखकर मुस्कुराई और वो भागकर इप्सिता को गले लगाते हुए बोली, इशु तुझे पता है आज मुझे कितनी बड़ी गुड न्यूज मिली है? इप्सिता और नंदिनी की मॉम दोनों नंदिनी को इतना ज्यादा खुश होते देखकर हैरान हो गई। तभी इप्सिता ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे आराम से क्या कर रही हो तुम, गिर जाएंगे हम, ऐसा मत करो, रुको और बताओ क्या हुआ।